તારીખ 1-2-1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 8
અહમ મમરૂ મિથ્યાત્વ કા નાશ કરે પર પદાર્થમાં પોતા રૂપ અહમ મમરૂપ હૈ मिथ्यात्व का पहले नाश करे, फिर पर राग रूप भाव का विध्वंस करे, वितरागता प्राप्त करे। एक सामान्य व्याख्या करी के प्रथम मिथ्यात्व नो नाश थाय अने पछी राग नो नाश थाय। एटले पहला श्रद्धा अज्ञान ने मिथ्यात्व नो नाश थाय ने पछी चारित्र मा राग नो नाश थाय। ई तो क्रम लीधो, जो पर राग मिटे तो वितराग हो, अने ज्यारे राग बधो मटी जाय त्यारे वितराग थाय। ए वात पूरी थई गई, हवे शुरू करे छे। जब पर प्रवेश का अभाव भाव हुआ तब स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान होवे। क्या कहते हैं कि पर प्रवेश का जो अभाव है वो प्रयोग का विषय है। क्यों कि उल्टा प्रयोग में पर प्रवेश का सद्भाव है। जैसे एक मीठी या खट्टी चीज जीव पर मुंह में रखते हैं तो क्या लगता है कि इस रस का कोई प्रवेश होता है, रस अंदर उतरता है, ऐसा लगता है। पेट में डालते ना, क्योंकि वो कितने को वो रस ग्रंथि है, उसमें से पानी छूटता है, जिसको अमी रस कहते हैं, पाचक रस जिसको कहते हैं। और वो जो मिठाई वगैरह है या खट्टापन है, वो भी जैसे अंदर में कोई प्रवेश होता हो, उसका रस का अंदर में वो पर प्रवेश भाव है। जैसे ठंडी लगती है तो ठंडी का जैसे मेरे में प्रवेश होता हो, वो पर प्रवेश भाव है। जैसे आवाज आई तो वहां अपने को तकलीफ पड़ गई, डिस्टर्ब हो रहा है, तो जैसे आवाज अपना आत्मा में प्रवेश हो ऐसा लगता है। दुर्गंध तो सहन नहीं करते, जैसे अंदर प्रवेश हो जाता हूं। ये सब पर पदार्थ का प्रवेश का जो भाव है वो उसका अभाव होवे तो स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान आत्म ज्ञान होवे। ऐसा पर प्रवेश भाव का सद्भाव होवे तो स्वसंवेदन ज्ञान नहीं होवे, क्योंकि वेदन वहां जाता है, उसको वेदने के लिए वेदन जाता है, वेद नहीं सकता है, लेकिन उसकी दिशा उल्टी रहती है। तो ये बात प्रयोग की है, कैसे मिथ्यात्व और ज्ञान का अभाव करके स्वसंवेदन को प्रकट करना, ये प्रयोग कैसे करना कि पर प्रवेश भाव का अभाव करना। मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है, ज्ञान उतना स्वयं घनिष्ठ भाव है कि उसमें किसी का प्रवेश होने का अवकाश नहीं है। जो पर प्रवेश भाव का अनुभव है वो अध्यास रूप मिथ्या अनुभव है, और वही अपने स्वसंवेदन को रोकने वाला, प्रतिबंध करने वाला परिणाम है। तो उसका अभाव करने से मिथ्यात्व ज्ञान का नाश होता है। जो समझ में आती है उसको परिणमन में लागू करना, उसका नाम तो प्रयोग है। कि जब ज्ञान में दूसरा कोई पदार्थ का प्रवेश नहीं है, रस का, गंध का, कुछ का भी, आवाज का, तो मुझे अनुभव उल्टा क्यों हो रहा है? अब मेरा अनुभव को मैं तलाश करूं तो समझ और अनुभव में जो विरुद्धपना है वो सही समझ से तो छोड़ना है। सही समझ का ये उपयोग है कि जो विरोधपना है, जो झूठा है उसको छोड़ दे, सत्य से असत्य को तोड़ दे, उसी वो समझ का उपयोग है। अगर बात सही समझे और उसका परिणमन में कोई उपयोग नहीं करे, समझ को लागू नहीं करे परिणमन में, तो समझना काहे को, समझ का समझ करने का उद्देश्य क्यों, क्या हाँ सिर्फ अपनी समझ को अपने में लागू करके उसका कोई उपयोग हम करें तो वो समझ हमारे काम की है, वरना तो हम दुख भोग लेंगे। और समझ सुख के लिए जो समझ करी उसका कोई उपयोग होगा नहीं, और दुख का जैसे वेदना आएगी क्या करेंगे, वेदना का प्रवेश ज्ञान की सत्ता में तो नहीं, और वेदना की सत्ता में ज्ञान का प्रवेश नहीं। तो वो समझ में आया लेकिन वो बात अनुभव में लागू नहीं किया तो वेदना से मुक्त नहीं होंगे, वेदना में पकड़ में आ जाएंगे, वेदना की पकड़ में, और वेदना को भोगने में दुख होगा। तो ये हाँ आदत वो बन गई है। क्योंकि ये प्रयोग की बात पहले विचार और विकल्प में आती है, इसलिए बहुत जो प्रयोग का प्रारंभ है वो तलाश करने से होता है। जैसे गुरुदेव कहते थे कि तुझे कोई चीज अच्छी लगती है अथवा सुख का कारण रूप लगती है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक परमाणु को देख ले, तो तेरा सुख कहाँ है, सुख तुझे दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसे तलाश करनी पड़ती है कि पर प्रवेश भाव से अच्छा लगा तो क्या आत्मा ज्ञान में क्या आया, तलाश करें हम हमारे ज्ञान को, जांच करें तलाश करें क्या आया ज्ञान में, ये झूठा आनंद क्यों लिया। जब ज्ञान में कुछ आता नहीं तो ये झूठा आनंद है, और जब कोई दुख होता है तो ज्ञान में से तो कुछ जाता नहीं अपने में से, क्या नुकसान हुआ, क्यों दुखी हो रहा है, ज्ञान को कुछ होता नहीं, वो तो अव्याबाध स्वरूप है, उसको कोई बाधा पहुंचा नहीं सकते, तो तलाश करना पड़ता है। तो तलाश करने में वो विकल्प वाली बात नहीं रहेगी, फिर तो ये खोज की बात हो गई। इस प्रकार से जब जब तीव्र रस होवे तब ज्ञान में कोई उसका क्या कारण हुआ कि वो अपने में ये तीव्र रस हो गया, हर्ष का या दुख का क्यों हुआ, वो तलाश करने से शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन सब बात अभ्यास से आसान होती है। हर बात में जितना प्रैक्टिस हो जितना अभ्यास हो तो आज करे कल करे कब करे करना तो होगा ही, इसके बिना तो कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जैसे पर प्रवेश भाव में आत्मा खुद धोखा में आता है, कोई दूसरा अपने को धोखा देता है, छेतरपिंडी करता है, तो अपने को लगता है कि क्या हमारा से उसका हमारी अक्ल कम है, कोई हमको धोखा दे जाता है ऐसा लगता है। तो ये पर प्रवेश भाव में तो यही होता है, खुद से खुद ही की क्षेत्र पिंडी होती है। तो वैसे ही जागृत हो जाए, जब कोई अपने को धोखा दे दे जाता है तो जागृत रहता कि नहीं रहता है, तो जागृत में ये फर्क पड़ जाएगा, रस नहीं आएगा। जागृत होने से रस नहीं आएगा। और दूसरा ये भी पता चले कि जितना हम रस लेते हैं, उद्गल रस जितना लेते हैं, उतनी हमारी शांति का घात होता है। ये बड़ा नुकसान है। जितना हम पुद्गल पदार्थों का रस लेंगे, चाहे खाने में, पीने में, संयोग में, वियोग में, किधर भी कोई भी पर पदार्थ का लक्ष्य से जितना रस आएगा, उतनी हमारी शांति है उसका घात होगा। आगे जाकर के चैन नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, वे क्या करे, हमारे पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं पड़ता है। ऐसे आदमी देखे हमने कि हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है हमारे पास, हाँ, फिर भी समझ में नहीं आता हमको चैन नहीं पड़ता। ये शिकायत तो सुनते हैं, और खास करके वृद्धावस्था में, कि क्या कोई तबीयत खराब हुई तो नहीं, तबीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जांच करा ली है, सब ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि एवरीथिंग राइट, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं है, सब टेस्टिंग हो गया, चेकिंग हो गया, लेकिन कहीं चैन नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या कि हम पूर्व भूतकाल में, पूर्व काल में उतना रस ले लिया है, सब परिग्रह आदि इकट्ठा करने में रस बहुत ले लिया, तो फिर उसका नतीजा आ गया, रिजल्ट आया, पागड़ी नो वल छेड़े, वल चढ़ता चढ़ता पागड़ी नो वल छेड़े आवे। पिछले उम्र में अशांति 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 की परिणति हो जाती है, उसको कहीं चैन नहीं पड़ती, ऐसा बन जाता है। यही कारण है कि जितना पुद्गल रस लिया उतना चेतन रस को मारा, चेतन रस का घात किया। इसलिए ये जागृत रहना है कि कहीं भी हमें रस नहीं लेना है, चाहे संयोग अच्छे से अच्छा हो जाए, पूर्व कर्म की देन है, हमें वर्तमान में कोई मतलब नहीं है, इससे न हमें सुख है न इससे हमें दुख है। तो पर प्रवेश का अभाव हुआ तब स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान हो गए, यानी अपना ज्ञान का अपने को अनुभव हो गए। पर का अनुभव छोड़े तो अपना अनुभव होवे न, दो जगह तो अनुभव होगा नहीं। अथवा अपने द्रिगुण पर्याय का विचार करके निज पद को जाने, अथवा उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने, उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने कि ज्ञान कहाँ से आता है, कोई वस्तु है, ज्ञानमय वस्तु है, उसमें से ज्ञान आता है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। ये भी सुनते हैं तो आवाज में से ज्ञान नहीं आता, ये ग्रंथ में से भी ज्ञान नहीं आता, पर आवाज में से भी ज्ञान नहीं आता। भीतर में देखे तो ज्ञान में से ही ज्ञान आता है, आत्मा में से ज्ञान आता है, तो वो देखने की चीज है, विचार करने की नहीं। ज्ञान ज्ञान में से आता है, वो विचार करने की चीज नहीं है, वो देखने की चीज है कि काय में से आता है। आया कहाँ से? ज्ञान आता है वो बात जरूर है, कहाँ से आता है? जड़ शब्द में से नहीं आता, ज्ञान ज्ञान में से आता है। तो थोड़ा ज्ञान को ज्ञान के प्रति थोड़ा बढ़ करके देखना पड़ता है, झुक करके देखना पड़ता है कि ज्ञान कहाँ से आता है, मेरा ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान को आने का कहाँ से हुआ, उसका प्रभव स्थान कौन, उद्भव स्थान कौन है, कौन चीज है। तो एक वस्तु है, इस वस्तु में से ज्ञान आता ही रहता है। और ज्ञान जब सतत आता है तो उसकी सिद्धि करता है, प्रतीति कराता है कि सतत आने वाली चीज बहुत भरी हो तो ही सतत आ सकती है। क्या इसमें बहुत ज्ञान भंडार बड़ा है कि जिसमें से ज्ञान निरंतर 24 घंटों आता ही रहता है और हजारों साल से आता है। जब ये निरंतर आता है तो वर्तमान ये बताता है कि करोड़ों साल से, हजारों साल से, अरबों साल से आता है, तो कितना है? अखूट ज्ञान भंडार भरा है, उसमें से ज्ञान आता है। तो थोड़ा झुक करके दिखने को आता है तो उसमें स्वरूप निश्चय होने का बनता है। ज्ञान अपने को अंदर में झुक करके अपना निश्चय करता है तो स्वरूप निश्चय हो जाता है। ऐसी बात है। ભલે છોડી જાય, વળી પાછું ફરીને શરૂ કરું, બીજું શું? બાર બાર પ્રયત્ન તો બાર બાર કરના પડેગા, એટલે તો કરોત કી ઉપમા દિયા હૈ। करौंत से टुकड़ा करने में बार बार खींचना पड़ता है, जब दो टुकड़ा होता है, भेद ज्ञान है वो करौंत है। बार बार उसका प्रयोग करने से ही भिन्नता होती है, सीधी भिन्नता नहीं होगी, कोई बात नहीं। बार बार प्रयत्न करने से उसको अभ्यास कहते हैं, भेद ज्ञान का अभ्यास कहते हैं, बार बार करने से। अवलोकन करने का क्लास नहीं लगाएगा, फिर भी काम तो अपने को करना पड़ेगा। क्लास में तो परिभाषा मिलेगी, व्याख्या डेफिनेशन देंगे, काम तो अपने को करना पड़ेगा हर एक को। जैसे वो साइंस आप तो पढ़े नहीं उतना, जो साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनको इनके जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। पहले तो वो दिखाते हैं, फिर विद्यार्थी को बोलते हैं कि तुम करो, हम देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट तुमने देखा वो तुम अपने हाथ से करो। तो पहले उसको पकड़ने में फर्क पड़ता है तो बोलेगे ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ो। क्या उसको तो चीज पकड़ने को नहीं आती है, साधन एपरेटस जिसको कहते हैं, तो साधन को कैसे पकड़ा जाए वो भी उनको नहीं आता है शुरू शुरू में। तो उनको कहते तुमको यहां से पकड़ना है, इस ढंग से पकड़ना है, ऐसे छोटी मोटी सब चीज प्रैक्टिकल साइड से समझाई जाती है। तो फिर वो प्रयोग कर सकता है। तो पहले तो भूल हो, वहां वो सामने खड़ा हो प्रत्यक्ष, तो उनको भूल सुधार दे, फिर अपने आप कर बार बार करना पड़ता है तो आ जाता है उसको। ऐसा तो जो प्रयोग करके आवे उनकी तो भूल बिना भूल की चर्चा करें, क्लास भी निकाले, लेकिन जो होमवर्क करके आवे नहीं उसको क्या समझाए, क्या सिखाए? कुछ होमवर्क तो अपना होना चाहिए कि नहीं? स्कूल में भी होमवर्क देते कि नहीं देते? घर पे करके आना पड़ता है विद्यार्थी को, तो फिर उसमें भूल है नहीं भूल है वो देखेंगे, लेकिन जो होमवर्क करे नहीं उसको क्या समझा रहे, उसको क्या सीखेंगे, वो कुछ सीख नहीं सकते। वो ये तो अपना आत्महित करने की, जिसको बहुत उमंग हो, क्या उसको ऐसा लगे कि अनंत काल में मैंने मेरा काम नहीं किया और अनंत सुख प्राप्त करने का जो ये काम है ये करने का मुझे मौका मिला है, मैं शीघ्र से अति शीघ्र मैं अभी मेरे काम में लग जाऊं, वो तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि होमवर्क करो तुम, उसको कहना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। तो आगे पीछे उसका जो बैकग्राउंड बराबर होता है, पश्चात भूमि का जो बराबर होती है पार्श्व भूमि, तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कहा कि उल्लासित वीर्यवान तत्व का ग्रहण करने का अधिकारी होता है। श्रीमद जी ने बोलिया कृपालु देव ने, उल्लासित वीर्यवान तत्व पाने का अधिकारी होता है, पात्र होता है, जिसको अपना काम कर ले करने का उल्लास नहीं हो, उनको अपना बाह्य संसार के कार्य करने का उतना उल्लास है कि ये उल्लास उनको आता नहीं है, क्योंकि रुचि तो काम करती है, रुचि बिना तो कोई जीव है ही नहीं, रस बिना का तो कोई जीव है नहीं, तो नुकसान का तो बड़ा व्यापार चलता है, वो वहां थोड़ा ब्रेक लग जाना चाहिए। मैं मेरे नुकसान को करूं और हर्ष पात फिर उसमें राजता हूं मैं, ये क्या बात है। यार लक्ष्मी ने अधिकार बद्धता सु विधुते तो कहो, सु कुटुंब ने परिवार थी वधवापणो ये नहीं ग्रहो, का अहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो, उसमें क्यों हर्ष मानते हो, ये बात है। अपना नुकसान करें और राजी होवे उसका नाम अज्ञान, अज्ञान किसका नाम, कि अपना नुकसान करे और खुशी हो जाए, नुकसान ही में खुशी हो जाए, उसका नाम तो अज्ञान है और क्या। अपने उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने तो कैसी जानने में आएगी कि अनंत महिमा का भंडार अनंत महिमा का भंडार स्वरूप है, ऐसा जानने में आवे, उतनी महिमा आवे, अनंत महिमा का भंडार सार अविकार, सार सुख रूप, अविकार मैंने पवित्र, अपार शक्ति से मंडित मेरा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान रूप वस्तु को अपने उपयोग में जाने और ऐसा भाव प्रतीति द्वारा करे, और उसकी खातरी प्रतीति भी हो गया ऐसा ही मैं हूं, जिसका ध्यान धरने पर निश्चलता होगी, ऐसा जाने कि इसका ध्यान धरूंगा तो मुझे निश्चलता प्राप्त होगी, निश्चल दशा मेरी आएगी। प्रयोग तो बहुत लेते हैं दीपचंद जी, प्रयोग की बात बहुत लेते हैं, नहीं हम सारा ग्रंथ में बहुत जगह वो बात है, प्रयोग की बात बहुत जगह है। ये मयूर मकरंद पाषाण का उनका दृष्टांत है कि उसमें मोर दिखता है तो पाषाण नहीं दिखता, और पाषाण दिखने से मोर नहीं दिखता। ऐसे ज्ञान में अपना अस्तित्व दिखने से दूसरा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि दूसरा का अस्तित्व वहां नहीं है, दूसरा कहां से दिखे। तो एकांत पर को जानने से, एकांत पर को ही जानना होता है, और वो पर को अपना रूप जान लेता है, एकत्व रूप से जान लेता है। कहते हैं कि ऐसा जानना नहीं जानना, ये विपरीत रीत है जानने की, ये विपरीत। तेरे में कहां कुछ है, तेरे अस्तित्व में तुम अकेला है, जिसमें प्रतिबिंब होता है वो भी तू है, वो भी ज्ञान है, मैंने तू स्वयं है, तो तेरे में तो और कुछ है ही नहीं। दूसरे का अस्तित्व को तुम क्यों ग्रहण करता हूं तेरे में। तो निज में निज को जानने से निज का ज्ञान होता है। तो निज में निज को जानने का उद्देश्य पकड़ करके निज में निज को जानना है क्या, निज में निज को जानने का उद्देश्य ग्रहण करके अपने को जाने, तो ज्ञान रूप वस्तु जानने में आती है। अपने जानने का उद्देश्य नहीं है तो प्रतिबिंब पड़ेगा, उसको ही जान लेगा कि मुझे ये मेरे में जानने में आया, मुझे आवाज आई, मुझे गंध आई, मुझे वो हुआ। प्रकाश अस्तित्व ग्रहण हो जाएगा जानने के साथ। भूताविष्ट का दृष्टांत लिया है ना, इसमें मैं मनुष्य हूं, ये भूताविष्ट है, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन भूत ऐसा लग गया कि मैं तो मनुष्य हूं, तो मनुष्य नहीं है, आत्मा है, ऐसी बात है। लेकिन वो भूताविष्ट ऐसा महसूस करता है कि मेरे में भूत का प्रवेश हो गया है, ये भ्रांति है। प्रवेश होने की जगह ही कहाँ है, अवकाश ही कहाँ है, आत्मा में तो कोई अवकाश नहीं है ही नहीं।
भूल होने का कारण ध्यात्म बुद्धि है,
हाँ ध्यात्म बुद्धि से होता, देह को आत्मा मान लिया, देह शरीर मनुष्य रूप है, तो मनुष्य में मनुष्य हूं ऐसा मान लिया, देह तो पुद्गल का बना हुआ है और तेरे वश में भी नहीं, तेरा स्वरूप हो तो तेरे वश में होता, देह अपने वश में नहीं है। गुरुदेव कहते थे मन में 9 पांचेरे की भूल है, 8 पांचेरे का मन होता है और भूल 9 पांचेरे की है, इतनी बड़ी भूल है, छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। राष्ट्र में चर्चा चली ना, भक्ति का स्वरूप स्वच्छंद निरोध रहित रूप है। क्या भक्ति कितनी भी होवे लेकिन स्वच्छंद होवे तो, हाँ भक्ति है ही नहीं ऐसी बात। वैसे तो सब अपने अपने मंदिरों में अपने अपने देव गुरु शास्त्र की भक्ति करते हैं, अपने देव माने हुए हैं, अपने गुरु माने हुए हैं, अपने शास्त्र माने हुए, इसकी भक्ति नहीं करते क्या? लेकिन दूसरे की बात आएगी तो ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, स्वरूप तो जानते नहीं, देव गुरु शास्त्र का तो स्वरूप जाने नहीं, लेकिन हमारे संप्रदाय का देव गुरु शास्त्र है उसकी तो भक्ति करेंगे। ऐसी बात नहीं है, अपना ही सत्य दूसरे का सत्य नहीं तो ये स्वच्छंद हो गया, क्योंकि अपना नहीं है इसलिए तो ये स्वच्छंद हो गया, तो वितराग देव का भी वो विरोध करेगा क्योंकि अपना नहीं है। कृपालु देव लिखे कि जिनाय नमः सर्वज्ञाय नमः, और सर्वज्ञ को विराजमान करें तो कह नहीं हम तो कृपालु देव को मानेंगे, वहां नहीं जाएंगे। स्वच्छंद हो गया क्या? नहीं हुआ। ज्ञान बिना भक्ति सच्ची होती नहीं, योग भक्ति वो सच्ची भक्ति है नहीं, स्वच्छंद निरूपणा उसमें आ ही नहीं सकता। जो भक्ति का यथार्थ लक्षण क्या है? स्वच्छंद निरोधपणा, ये भक्ति का यथार्थ लक्षण है। भक्ति कितनी भी कर सकता है,
ये भक्ति भक्ति व्यक्ति राग की होगी, ये व्यक्ति का राग है, वो ज्ञान नहीं है। भक्ति का स्वरूप तो ज्ञान में होना चाहिए, राग में नहीं होना चाहिए। ऐसा है मध्यस्थता होनी चाहिए, और जब वो खुद नमन करते हैं जिन आचार्यों को, जिन परमात्मा परमेष्टियों को, परमात्मा उनके प्रति भी भक्ति अधिक आनी चाहिए ना। अधिक भक्ति आनी चाहिए, जैसे कि हमको हमारे श्री गुरु प्रति भक्ति है, लेकिन श्री गुरु को जिनके प्रति भक्ति है उनके प्रति अधिक आवे या कम आवे? कि आप तो हमारे पूज्य के भी पूज्य हो, आपकी तो क्या बात करें, ऐसा होना चाहिए। हाँ ज्यादा आनी चाहिए। ये गड़बड़ हो जाती है। स्वच्छंद निरोध ये भक्ति का स्वरूप है। नास्तिक को नहीं समझे तो अकेली भक्ति मान ले, नास्तिक का पहलू क्या है वो भी समझना पड़े। अस्ति नास्ति दोनों से क्यों समझाते हैं? कि कभी जीव नास्ति में भूल करता है, अस्ति को पकड़ कर नास्ति में भूल करता है, या नास्ति को पकड़ कर अस्ति में भूल करता है, तो दोनों प्रकार साफ नहीं हुआ, दोनों पहलू से साफ होना चाहिए, उसी का नाम सम्यक है। दूसरा का मतलब वो सच्चा नहीं, सच्चा का निषेध न करे तो ये सच्चा उसने जाना कैसा? सच्चा का निषेध करे तो जिसको माना है वो सच्चा है या कैसा है? दोनों का स्वरूप अलग अलग है क्या? जैसे हम दूसरे ज्ञानी को नहीं माने तो क्या होगा? दुर्दाय बुद्धि से क्या होता है, हम तो ये हमारे उपकारी है इनको मानेंगे, दूसरे की महिमा हम नहीं करेंगे, क्या हुआ? उसने ज्ञानी को पहचाना नहीं है। स्वरूप पहचानने से तो सबकी कीमत पहचान पर होती है। जो हीरा मेरे जेब में है उसकी कीमत लाख रुपया, और वही जी हीरा आपके जेब में जाने से कोई 75,000 हो जाता है क्या? कैसे होगा? हमारा सम्यक दर्शन आदरणीय पूजनीय, और दूसरे का सम्यक दर्शन आदरणीय पूजनीय नहीं, क्या बात है? सम्यक दर्शन को बदल जाता है क्या? स्वच्छंद वहां हो जाता है, ऐसा करने से, ऐसा होने से स्वच्छंद होता है। तो भक्ति स्वच्छंद निरोध रहित नहीं हुई, स्वच्छंद का निरोध हो जाने पर जो भक्ति है वो सही है, ऐसी बात है। कितनी गंभीरता है एक एक बात में। स्वरूप समझे, स्वरूप ने ओळखी ने, स्वरूप को पहचान करके निरोध होगा। जहां तक पहचानेंगे नहीं, ओघ संगना होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अपने त्या तो गुरुदेव स्वरूप समझावा माटे पैथिए पैथिए तेल नाख्यू छे, કેવી દશા છે? એવું છે, જો વિતરાગ દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર હૈ, ઇસકા નામ સે કોઈ મતલબ નહીં। જો રાગી દેવ હૈ, રાગી ગુરુ હૈ, રક્ત ગુરુ હૈ, ઓર રાગ વર્ધક શાસ્ત્ર હૈ, उनकी उपेक्षा करें हम। जो रागी देव है और रागी रक्त गुरु है और जो राग वर्धक शास्त्र है उनकी उपेक्षा करें, लेकिन जो वितरागी देव है, वितरागी गुरु है, वितरागी शास्त्र है, कोई भी नाम हो उसका, उसका नाम कोई भी हो, उसका नाम सिमंदर भगवान हो या सूर्य कीर्ति हो, महावीर भगवान हो या ऋषभदेव भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो या शांतिनाथ, में कुछ भी नाम हो, नाम से क्या लेना देना है, इसका स्वरूप से हमारा तो संबंध है, ऐसी बात है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो जिसमें जो दोष नहीं है ऐसा दोष उनको लगाने से लांछन आता है। हमारे जो पूर्वज हैं वो तो हमारे पूर्वज हैं सब, है कि नहीं? पूर्वज है कि नहीं? दादा के दादा के दादा है सब। तो हमारे पिताजी को भी कोई खराब बोले तो हम सहन नहीं करते, हमारे बाप को ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहेंगे कि नहीं? कोई पिताजी की गाली भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका कोई विकृति करे तो कैसे अच्छा लगे? नहीं लगे। हमारे घर पे आए थे महावीर जयंती के लिए रथ यात्रा साल रात में, बोले कि कालजी स्वामी का फोटो आप रथ यात्रा में मत लाओ। मैंने कहा हमारे रथ यात्रा में आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, अपने को तो साथ में चलना है, हमारा सब प्रोग्राम प्लॉट वगैरह हम बनाएंगे, आपका आप बनाओ, अगर आप हमारे में हस्तक्षेप करें तो हम आप में करें क्या? तो आप लोग तो बुद्धिमान है, मैं एक प्रश्न करता हूँ कि क्या आप बिना कपड़ा कोई अलंकार लगाते हो, पहनते हो क्या? कितने बुद्धिमान है आप लोग बताइए। ये बात आउट ऑफ कॉमन सेंस है या बुद्धिमानी की बात है? क्या बात है? विचार में पड़ गए, जवाब क्या दें? कहीं कपड़ा नहीं पहने और अलंकार पहने, ऐसा कहीं भी शोभा देता है क्या? ऐसा होता है क्या? उतना भी तो आपको समझ नहीं पड़ते। और आप कहते हैं कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं और हमारे काम में आप आक्षेप करते हो, हम तो बहुत समझ करके बैठे हैं, तुम तो उतना भी नहीं समझते। बहुत पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है। वो परमात्मा को गाली देने से अधिक खराब है, क्योंकि गाली देने में तो कुछ चौंटती नहीं है, ये तो चौंटा देते हैं। इसके अंग पर लगा देते हैं गाली, तो उसका अंग उसके अंग पर लगेगी नहीं, ये तो हवा में चले जाएंगे। शब्द का वाइब्रेशन तो उसको लगने वाला नहीं है, लेकिन ये तो लगा देते हैं। हाँ, ज्यादा पहना था बाबा जी। कोई बात समझदारी की थोड़ी भी है क्या? थोड़ी भी नहीं है। पहले तो वो मुनि हुए थे, आप सभी तीर्थंकरों के पुराण देखो, सबों ने दीक्षा ली है, ली के नहीं ली तो त्यागी हुए। फिर अलंकार कब से पहनने लगे? वो त्याग में आगे बढ़े या भोग में आगे बढ़े? क्या हुआ? राग में आगे बढ़े या वितरकता में आगे बढ़े? क्या हुआ? वो भगवान को मुनिंद्र भी कहते हैं, मुनियों के इंद्र। इंद्र मैंने श्रेष्ठ, इंद्र मैंने श्रेष्ठ। देवेंद्र जिसको कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ को नरेंद्र कहते हैं, देवों में श्रेष्ठ है उसको देवेंद्र कहते हैं, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ है उसको मुनिंद्र कहते हैं भगवान को। तो मुनि तो त्यागी वैरागी, और मुनिंद्र है वो भोगी, वो कैसे बनेगा? वो बात कोई समझदारी की तो होनी चाहिए, ऐसा गड़बड़ चलता है। इस भोग संज्ञा में ये सब चलता है, भोग संज्ञा में पूरी बुद्धि चली जाती है। मैं बड़े बड़े विद्वान हैं, वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वो शास्त्रार्थ अपने साथ शास्त्रार्थ करने को बैठते हैं वो, लेकिन उतने उसमें वो दिमाग नहीं चलाते हैं। ऐसी बात है। अच्छे अच्छे बुद्धिमानों के ये हो जाता है। वो अपना प्रश्न निकाले थे ना कि गुरुदेव का तो जय जयकार करे, और गुरुदेव जिसका ध्यान करे अपना पूर्ण पद का, उसका तो निषेध करे। कैसे बुद्धिमानी है वो? क्योंकि ज्यादा लोग ऐसा करने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा विरोध हो जाएगा, अगर हम मानेंगे तो हमारा विरोध हो जाएगा, लोक संज्ञा में बुद्धि खत्म हो जाती है। सारा संप्रदाय ऐसा मानता है, मानना पड़े, ये लोक संज्ञा होगी। लोक संज्ञा में फिर विचार शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी बात है। हर संप्रदाय में बुद्धिमान लोग हुए हैं, और अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं जिन्होंने ग्रंथ 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 के ग्रंथ लिखे हैं बड़े बड़े, लेकिन देवगुरु शास्त्र में गड़बड़ी। क्या देवगुरु शास्त्र में ग्रहित मिथ्यात काम तो करेगा? ऐसे पता लगता है कि भाई वो कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी शास्त्र बनाया हो, कुछ भी हो, लेकिन देवगुरु शास्त्र में स्थूलता क्यों आ गई? इतनी स्थूलता क्यों, ये विचारने लायक चीज है। तो जिसको पूर्ण शुद्धि का अपना ध्येय हो उनको ये भूल नहीं होगी, शुरू से ये भूल नहीं आएगी, क्योंकि अपना ध्येय पूर्ण शुद्धि का है। कहीं भी अशुद्धि की बात करना, करवाना, अनुमोदन करना, वो बात रहने वाली नहीं है। ऐसी बात
है। नीचे तो गंभीर है, पर व्यवहार
बहुत गंभीर है। व्यवहार सर्वोत्कृष्ट व्यवहार, जैन दर्शन का व्यवहार सर्वोत्कृष्ट है। एक सूक्ष्म मा सूक्ष्म दोष, हिंसा हिंसा, एक परमाणु, इसकी एक पर्याय, एक समय की पर्याय का विवेक किया है, जीव की एक समय की पर्याय का विवेक किया है, एक समय के पर्याय में इसका अविभाग प्रतिच्छेद का विवेक किया है। सब व्यवहार का आइटम से है, सर्वोत्कृष्ट व्यवहार है, निर्दोष व्यवहार, निर्दोष मार्ग है ना, तो मार्ग पवित्रता का है, उसका व्यवहार भी निर्दोष होता है। इसका साधन दूषित है, उसका साध्य कभी निर्दोष हो ही नहीं सकता। तो ये व्यवहार है वो तो साधन है, व्यवहार को तो साधन कहते हैं दूसरी भाषा में। जिसका साधन खोटा उसका साध्य भी खोटा, इसलिए हम शुरू से कहते हैं कोई बात अगर ये खोटा साधन है, अपने को नहीं इसका प्रयोग कर रहा है, काम का नहीं, काम का है ही नहीं, इसका काम कर, ऐसा काम करने का ही नहीं। सिद्धांतिक बात है ये, कहीं खोटा साधन का प्रयोग नहीं करें। व्यवहार खोटा और निश्चय सच्चा बन सकता है क्या? व्यवहार तो स्थूल विषय है, जिसको स्थूल विषय में विवेक नहीं उसको सूक्ष्म विषय में विवेक आएगा कहां से? बन ही नहीं सकता। जैसे कृपालु देव ने कहा कि सभी साधनों में सत्संग सबसे उत्कृष्ट है। अब विवेक कहाँ करना है? सत्संग को कुछ गौण करके दूसरा दूसरा साधन को जो ग्रहण करते हैं, आग्रह रखते हैं, उसको जब निमित्त का विवेक नहीं, साधन का बाह्य निमित्त का, बाह्य साधन का विवेक नहीं, अंतरंग साधन का विवेक कहां से आएगा? उसको है ही विशाल बुद्धि में संकुचितता नहीं है, विशालता में संकुचितता नहीं है, और मध्यस्थता में पक्षपात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनका अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग है दोनों का। विशालता में संकुचितता का अभाव है और मध्यस्थता में पक्षपात का अभाव है। क्या जो जैसा है वैसा देखे, पक्षपात नहीं करे। पक्षपात करने से क्या है कि वो दृष्टि है वो सही देख नहीं सकती, पक्षपात वाला है, उनको अपना पक्ष वाला ही अच्छा लगता है। मध्यस्थता में ऐसा नहीं, अपना पक्ष वाला हो, अपने को अपना पक्ष में अपना राग करता हो, अपने को सपोर्ट करता हो, दोष करता है कि नहीं, नहीं करो तो उसको ये डर नहीं लगे कि मेरा पक्ष छोड़ देगा तो छोड़ दे तो छोड़ दो, हमको कोई काम गलत नहीं करना। तो मध्यस्थ है वो सही देखेगा, और विशालता वाला है वो उदार चरित्र है, संकुचितता नहीं है उसको। थोड़ा भी किसका गुण हो उसका अनुमोदन करेगा। अच्छा, तो संकुचितता नहीं होगी। जैसे संप्रदाय बुद्धि है तो अपने संप्रदाय वाले को ही मानेगा, दूसरे को अच्छा हो तो नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। बात किसी की नहीं है, सत्य किसी का नहीं होता क्या, इसलिए अन्य मत से आया तो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अन्य मत कहां से हुआ, वो भगवान की वाणी में से हुआ, उसमें भी कुछ अंश सत्य का था। विकृति को हम निषेध करें लेकिन सही बात का क्यों निषेध करें, ऐसी बात है। जो जितने अंश में है वो गुण के साधक है तो उनका स्वीकार करेंगे, उसी का नाम सम्यक दृष्टि पड़ा है। चार वेद पुराण आदि शास्त्र सो मिथ्यात्मना, पर ज्ञानी ने तो ज्ञान भाषा ये ठिकाने ठहरो, ये सम्यक दृष्टि नो काम छे। सम्यक दृष्टि नो विषय बहु ऊंडो छे, तीसरो नथी, गहन विषय है वो, जिसका हर पहलू सम्यक है। क्या उसको सम्यक मार्ग कहते हैं कि जिसका हर पहलू अच्छा है। कोई भी दृष्टि से देखो तो गुण दृष्टि है, गुण को ही ग्रहण करेगी, इसका कोई पहलू अवगुण के लायक नहीं है, उसको सम्यक मार्ग कहते हैं। उसको ऐसी दृष्टिवान को सम्यक दृष्टि कहते हैं, ऐसे ज्ञानवान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, ऐसे बात है। बहुत गहन विषय है, इसलिए कहा ना कि सर्वज्ञ को भी सम्यक दृष्टि पड़े जाने तो उसका फल बहुत महान है। सर्वज्ञ को सर्वज्ञ रूप में जानना तो दूसरी बात हो गई, वो तो गुंजाइश ही नहीं है, अचिंत्य स्वरूप है सर्वज्ञ पना तो, लेकिन इस सम्यक दृष्टि के रूप में जाने तो भी इसका फल बहुत महान है। सम्यक तो समान है, सत्पुरुष के लेकर के सदगुरु से लेकर के सर्वज्ञ तक का सम्यक तो समान है, और ये मूल चीज है। इस देश पर तो सारा चंतर हुआ है वितरकता का, सम्यक तो नहीं हो तो आगे की कोई बात बनेगी नहीं, ये तो पाया की चीज है। इसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, इसका श्रद्धा भी सम्यक, इसका ज्ञान भी सम्यक, इसका आचरण भी सम्यक। सम्यक दृष्टि की सूक्ष्म ज्ञान की भूल को भी मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे,
और इसके पाप भाव को मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे, पुण्य पाप नहीं होता है क्या? मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप शुरू से वितराग हो जाते क्या? लेकिन उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे, चारित्र को मिथ्या विशेषण नहीं लगेगा, सम्यक लगेगा। तो वो चारित्र सम्यक चारित्र क्यों? तो क्योंकि सम्यक चारित्र में दो भेद है, ए चारित्र और चारित्र। जो आत्मा के अनुसरण करके होता है उसको चारित्र कहते हैं, जितना अंश में अनुसरण नहीं उसको ए चारित्र कहेंगे, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। ऐसी बात है, ए चारित्र दूसरी बात है, मिथ्या चारित्र दूसरी बात है। ऐसी बात है,
जिन्होंने मातलों जय गोपरम कृपावती का